ये आकाशवाणी है, अब आप अपर्णा सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों और वंचितों के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र और सेवा की भावना सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। श्री मोदी कल मध्य प्रदेश में अशोकनगर के ईसागढ़ में श्री आनंदपुर धाम में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कहा कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों का जीवन सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन जैसी विभिन्न पहलें लागू की जा रही हैं।
आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब और बुजुर्ग आयुष्मान योजना के कारण इलाज की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब पीएम आवास योजना के कारण अपने पक्के घर की चिंता से मुक्त हो रहा है। गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, सेवा की ये भावना आज ये सरकार की नीति भी है और निष्ठा भी है।
श्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, दुनिया में भौतिक प्रगति के बीच हम युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। केंद्र ने उभरते व्यापारिक मुद्दों से निपटने में हितधारकों की सहायता के लिए एक समर्पित ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड हेल्प डेस्क शुरू किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हेल्प डेस्क आयात और निर्यात की चुनौतियों, आयात में उछाल या डंपिंग, लॉजिस्टिक्स या आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित चुनौतियों, वित्तीय बैंकिंग मुद्दों और विनियामक या अनुपालन से संबंधित मुद्दों पर विचार करेगा। हेल्प डेस्क केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों से संबंधित व्यापार संबंधी मुद्दों को भी एकत्रित और संयोजित करेगा। मंत्रालय ने कहा कि आयात निर्यात समुदाय DGFT वेबसाइट पर जाकर अपने मुद्दों से संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत कर सकते हैं। वे DGFTEDI@nic.in पर ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल के विषय में ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड हेल्प डेस्क लिखना होगा। साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-111-5500 पर कॉल भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून को वापस करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। हमारे संवाददाता के अनुसार मुर्शिदाबाद जिले के सुती और शमशेरगंज में रैली के दौरान पुलिस पर गोलियों और बमों से हमले किए जाने के बाद सजूर चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस की गोलियों से 3 प्रदर्शनकारी घायल बताए जा रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मालदा सेक्टर से BSF जवानों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया। दक्षिण 24 परगना के अमतला और उत्तर 24 परगना के बोगांव से भी वक्फ मुद्दे पर आंदोलन की खबरें आई हैं। पुलिस ने आलिया विश्वविद्यालय के छात्रों की रैली को रोक दिया जब वे कोलकाता में पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 16 अप्रैल को नए वक्फ अधिनियम पर चर्चा के लिए मौलवियों, इमामों और मुअज्जमों से मुलाकात करेंगी। चीन ने अमरीकी वस्तुओं पर जवाबी शुल्क 74% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। चीन के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका द्वारा चीन पर अत्याधुनिक शुल्क लगाना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार नियमों का गंभीर उल्लंघन है और ये एक तरफा धमकाने का कार्य है। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन इस वर्ष 31 जुलाई तक खुले हैं। पुरस्कार विजेता के नाम गणतंत्र दिवस 2026 को घोषित किए जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 15 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।